ओम शांति। खुदा दोस्त की शत्रशा जिसने हमको क्या कहा है, खोया हुआ राज्य दिलाया। तो भगवान के खुदा दोस्त के हमारे पर कितने उपकार हैं जो हमें खोया हुआ राज्य दिलाया, स्मृति दिलाई कि तुम क्या थे और क्या बन गए। जिस सीट पर भगवान ने हम सबको बिठाया था वो छोड़कर हम विकारों के वशीभूत हो गए, सब कुछ भूल गए, धर्म कर्म सब भूल गए और विकारों के वशीभूत होकर दुखी हो गए, परेशान हो गए, तंग हो गए। फिर अंत में बाबा फिर से हमको सिंहासन पर बिठाता है और सिंहासन पर बिठाने के लिए बाबा वरदान देते हैं, क्योंकि सिंहासन पर बैठने के लिए योग्यता चाहिए। इसलिए बाबा जन्मते ही हम सबको पवित्र भव योग्य भव का वरदान देते हैं, क्योंकि सिंहासन साधारण सिंहासन नहीं है। एक तो वृक्षरूपी सिंहासन, दूसरा और कौन सा सिंहासन है, परमात्मा का दिल तख्त निशीन, उसके दिल तख्त रूपी सिंहासन पर हम आत्मा विराजमान होते हैं। तो उसके लिए बाबा हमें वरदान देते हैं, पवित्र बनो, योग्य बनो। तो पवित्रता ये हमारे ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ में तीव्र गति का अहम माध्यम है। ये जितनी हमारी प्योरिटी संकल्पों में, बोल में, कर्म में, हमारी भावनाओं में जितनी हमारी प्योरिटी होगी उतनी हमारी स्पीड पुरुषार्थ में आगे बढ़ती रहेगी, उतना ही हम उड़ते रहेंगे। छोटी छोटी बातों के अधीन नहीं होंगे, पराधीन नहीं होंगे, अपने अधिकार के स्मृति पर, उस स्मृति का हम स्वाद लेंगे, सुख लेंगे। इसलिए हमेशा बाबा के तीस सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं होगा। संसार में भी उसी की मानी जाती है जो व्यक्ति सीट पर सेट होता है, अगर सीट छोड़ दी उसके बाद कोई पूछता नहीं है उसको। तो हमें तो स्वयं भगवान ने सीट पर बिठाया हुआ है, सम्मान की सीट पर। हमें अपने जो रॉयल संस्कार हैं उनकी सीट पर। तो बाबा ने आज हम सबको दो सत्ताओं से अवगत कराया, जो हमारी अपनी है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, जो हमारे संस्कारों में है। और वो दो सत्ताएं कौन सी हैं, धर्म सत्ता और स्वराज्य की सत्ता। सारा खेल दो सत्ताओं पर चलता है, धर्म और राज्य, राजनीति। तो बाबा हमको धर्म का भी अर्थ बताते हैं और स्वराज्य के भी अर्थ बताते हैं। स्वराज्य अर्थात स्वयं पर राज्य करना, दूसरों पर राज्य करना आसान काम है, लेकिन स्वयं पर राज्य करना इसमें मेहनत है। लेकिन अगर हमको युक्ति आ जाती है, जो बाबा ने कहा अपने कर्मेंद्र का दरबार लगाओ, कर्मेंद्रिया जो कर्मचारी हैं, अगर हम कर्मचारियों का दिल जीत लेते हैं तो वो कर्मचारी हमें हमेशा हमारे सहयोगी बने रहेंगे। तो स्वराज्य की सत्ता, ये सत्ता हमको केवल अभी मिलती है, स्वराज्य की सत्ता। जितना हम इस पर मास्टरी कर लेते हैं उतना हमारा संयम युग भी अखंड निर्विघ्न पुरुषार्थ चलता रहता है और फ्यूचर में तो चलेगा चलेगा। तो सबसे बड़ी अभी जो पुरुषार्थ की मेहनत करनी पड़ती है, स्वराज्य की सत्ता पर हमेशा कायम रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और स्वराज्य की सत्ता में कौन कौन सी विघ्न आते हैं ये भी हम सबको मालूम है। हमारे ही कर्मचारी जो हमको दुख देते हैं, तंग करते हैं। कौन कौन से कर्मचारी हैं हमारे, हमारी कर्मेंद्रियां, सबसे जो घातक कर्मचारी कौन से हैं? आंखें। देखो हमको पक्का हो गया घातक है, लेकिन ऐसा नहीं, ये सबसे अच्छे कर्मचारी, ये सोचना भी हमको। तो इन कर्मचारियों का हमको दिल जीतना है। एक एक कर्मचारी को अगर हम अपना बना लेते हैं और उसकी नब्ज को हम समझ जाते हैं कि एक कर्मचारी कैसे खुश होगा, और एक बार खुश करने की हमको कला आ गई, तो फिर हमेशा वो हमारे कर्मचारी हमारे सहायक बने रहेंगे, हमें धोखा नहीं देंगे। ऐसे संसार में भी जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके पास जो कर्मचारी काम करते हैं, जो पूरा मनोयोग से, ईमानदारी से, निष्ठा से कार्य करते हैं, तो उनको जो ऑनर है उन पर पूरा विश्वास हो जाता है, सारे बिजनेस की चाबियां भी उनके हाथ में दे देते हैं, क्योंकि पता है कर्मचारी धोखा नहीं देगा, है ना। तो ये तो हमारे खुद कर्मचारी साथ में रहते हैं, और ये हमारे अपने ही कर्मचारी हैं, इनसे हम किनारा भी नहीं कर सकते। संसार में तो कर्मचारियों को निकाला भी जा सकता है, लेकिन इन कर्मचारियों को तो नहीं निकाल सकते। तो इनका हमको दिल जीतना है। ये सबसे अच्छे कर्मचारी है हमारे पुरुषार्थ में चार चांद लगाने के लिए। इन कर्मचारियों को परमात्म शक्तियों का हमको क्या करना है, परमात्म शक्तियों की खुराक देनी है, उनसे सजाना है, उनसे इनको शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि 24 घंटे हमको इन कर्मचारियों के साथ ही रहना है, छोड़ नहीं सकते, इनके साथ ही रह के पुरुषार्थ करना है। यही कर्मचारी हमको चढ़ा देंगे और यही कर्मचारी हमको गिरा देंगे। तो इस घर में रहना है तो घर में रहने वाला जो परिवार है उसका दिल जीतना पड़ेगा। अगर घर में कोई बच्चा है, कोई शरारती है, खराब काम भी करता है, फिर भी मां बाप क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं? नहीं, मां बाप का बहुत प्यार होता है, उनके मन में फिर भी संकल्प रहता है कि किसी न किसी तरीके से मेरा बच्चा सुधर जाए। उस बच्चे की कमजोरी का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं बाहर जाकर, पीटते हैं कोई? तो आत्मा श्री की मालिक है और एक कर्मेंद्रिय हमारी परिवार की तरह है, तो इनकी हमको पालना करनी है, इनको दुत्कारना नहीं है, इन कर्मेंद्रियों के स्वभाव को समझना है कि चाहती क्या है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, रोज अपना दरबार लगाओ। तो दरबार तो हम हमेशा लगाते भी होंगे, बार बार लगाते, लेकिन बार बार धोखा भी खा लेते हैं। धोखा क्यों खाते हैं, क्योंकि एक बहुत बहुत कड़ी बीमारी लगी है हम सबको, उस बीमारी से शायद कोई अशुद्धता होगा, और वो कौन सी बीमारी है? देह अभिमान। देह अभिमान, और आज की मिल में था ना, व्यर्थ की बड़ी कड़ी बीमारी है ये, क्या नहीं बनने देती, आज के वरदान में था डिस्क्रिप्शन में, योगी बनने नहीं देती है। तो हमको खुद की जांच करनी पड़ेगी कि व्यर्थ की बीमारी से मैं ग्रसित तो नहीं हूं, और ये बीमारी बड़ी सूक्ष्म है और बड़ी मीठी भी है, क्योंकि इस बीमारी से हमारा टाइम पास बहुत अच्छा होता है, कुछ समय के लिए बड़ा सुख मिलता है, रस मिलता है, लेकिन जब टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद फिर दुख चालू हो जाता है। तो हमारी कर्मेंद्रियों में बीमारी समा गई है, चाहे वो बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा करना, बुरा पढ़ना, बुरा फॉरवर्ड करना, तो ये बड़ी घातक बीमारी है, और ये हम सबको दिन प्रतिदिन दुखी करती रहती है। तो उसको हमको स्वीकार करना है। ऐसा नहीं है कि व्यर्थ से हमको परेशान हो जाना है, बल्कि स्वीकार करके उससे छूटने का खुद ही उपाय निकालना है, क्योंकि खुद को खुद ही निकाल सकते हैं, दूसरा कोई निकालेगा नहीं इसमें से। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है ये हमको खुद ही पता है। क्लास कराने वाला क्लास बता देगा, कि व्यर्थ नहीं करो, व्यर्थ नहीं सोचो। बाबा भी बता के चला गया कितने सालों से तुम मूल्य सुनते आ रहे हम, लेकिन मुक्त कहां हुए। तो बाबा ने मुक्त होने के साधन तो बताए हैं, लेकिन करना किसको पड़ेगा, स्वयं को ही करना पड़ेगा। इसलिए स्वयं का ही दोस्त बनना है, स्वयं से प्यार करना सीखना है, स्वयं पर रहम करना है। जब तक हम स्वयं पर रहम नहीं करते हैं, तब तक हमारी चाल चलन सुधरेगी नहीं, ठीक ठाक। लेकिन अंदर से हम सभी जैसे एक कीड़ा लगा होता है लकड़ी को, खोखले होते जाएंगे अंदर से। और फिर बाबा कहते हैं फिर खून जैसे कम होता है ऐसे फेस दिखाई देता है, शक्लें ऐसी होती हैं जैसे 12 बज गए हुए हैं। अरे भगवान मिला तो शक्ल से थोड़ा दिखाई देना चाहिए। एक तरफ बच्चे कहते हैं हमें खुशियों की खान मिली है, तो शक्ल के ऊपर दिखाई तो देना चाहिए। जिसके पास होता है वो दिखाई देता है, नहीं है तो फिर ऐसे चेहरा दिखाई देता है। तो अगर हमारे पास वो खजाने हैं, वो परमात्मा शक्तियां या हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं, जो आत्मा सतो प्रधान संस्कारों से परिपूर्ण थी, मुख्य सात जो आत्मा के गुण हैं कौन कौन से हैं, देखो सबको याद है ना। हाँ तो याद तो है हमको सबको। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल तो हैं, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल। एक है ज्ञान हम सबको बुद्धि में है, लेकिन वो ज्ञान शक्ति में तब्दील नहीं हुआ है। इसलिए समय पर ज्ञान स्मृति में आता है, लेकिन उस विघ्न से उस व्यर्थ से मुक्त होने की ताकत नहीं आती है। इसलिए बाबा कहते हैं माया भी मुरली सुन रही है। अर्थात जब भी हम मुरली सुनते हैं तो माया मुरली सुन रही साथ साथ, अर्थात क्या, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों से छूटने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन साथ साथ में हमारा द्वंद्व चलता रहता है कि इनसे कौन छूटा है। अभी मुरली सुनने के बाद फिर हमारी जो दिनचर्या होती है, अंदर तो हम संकल्प करेंगे कि आज से व्यर्थ नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे बाहर निकले तो चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज शक्ति के रूप में नहीं बदला है। तो ज्ञान को शक्ति में बदलना है तो हम पावरफुल बनेंगे। अदरवाइज इतने लंबे समय से ज्ञान सुनते सुनाते आ रहे हैं, लेकिन संस्कारों का परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। वो तो है, लेकिन जिस अनुपात में हमको महसूस होना चाहिए कि हाँ अब हमारा परिवर्तन हुआ है। जो बाबा ने कहा व्यर्थ से धनाग्य, पिछले संडे की मुरली में था ना कि बच्चे वर्कशॉप तो करते हैं लेकिन वर्क में नहीं आता है। आज भी मुरली में था विदेशियों के साथ मुलाकात, वर्कशॉप तो कर लेते हैं कि वैराग्य होना चाहिए, अगर वैराग्य नहीं है तो जीवन में क्या क्या परेशानी आती है, किन बातों से वैराग्य चाहिए, वर्कशॉप तो कर लेते हैं लेकिन वर्क में क्यों नहीं आता है। क्योंकि नॉलेज को हमने शक्ति के रूप में बदला, अर्थात पावरफुल नहीं बने केवल नॉलेजफुल बने। तो आज दो प्रकार की जो सत्ताएं बाबा ने देखी, सबसे पहली सत्ता थी धर्म सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात धारणा किसी की, बाबा ने तो दो ही बताए, एक है सत्यता दूसरा पवित्रता। और सत्यता अर्थात क्या, एक है सत्य बोलना, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी, तीसरा सत्य अर्थात आगे बुद्धि को चलाना। बाबा तो दो ही बताते हैं, चिंतन तो हमको करना है। बाबा तो केवल रास्ता बता देंगे दो कदम, आगे 2 किलोमीटर का रास्ता खुद ही चलना पड़ेगा। और सत्य अर्थात एक है सत्य बोलना, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी, तीसरा सत्य अर्थात, हाँ जी हाँ, स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित रहना जो अविनाशी बताया। तो सारे दिन हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं या सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो सारे दिन में सत्य असत्य के बीच ही हमारी द्वंद चलती रहती है, उसमें हमारा टाइम चला जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहला जो लेसन है अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा सत्य है, अविनाशी है, लेकिन सारा दिन हम उस स्मृति में कहां रहते हैं। अगर अभी अभी निरीक्षण कर लें तो हम कितना आत्म स्मृति में बैठे होंगे। तो सबसे बड़ी तो एक मायावी परेशानी है कि हम शरीर से इतना चिपक गए हैं कि उसके सारे संस्कार आत्मा के अंदर घुल गए हुए हैं, आत्मा में रावण घुस गया हुआ है। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं ना कि रावण में आत्मा नहीं है, आत्मा में रावण है। रावण में आत्मा है नहीं, आत्मा में रावण चला गया है। तो जैसे एकदम चीनी पानी के बीच में घुल जाती है फिर उसको अलग करो, ऐसे आत्मा के अंदर रावण घुल गया हुआ है, अब करो उसको अलग। ये तो उस बंदर की तरह, जो पहले भी बताया था कि एक बंदर है, बंदर की तरह चंचल होता है ना, अब उसको दो तीन मधुमक्खी डंक मार दे तो क्या हाल होगा उसका। अच्छा ऊपर से वो थोड़ा एक शराब की बोतल पी ले फिर क्या करेगा, वो क्या हालत हो जाएगी। अच्छा ऊपर से 5-7 प्रेत आत्मा घुस जाए उसके अंदर, ऐसा हमारा मन है, अब करो इसको कंट्रोल। लेकिन बाबा ने हम सबको शक्ति दी है, फिर परमात्म शक्ति के सिवाय मन नहीं बदलता है। लेकिन है ये सहज है अगर थोड़ा सा अटेंशन देंगे, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये, लेकिन हमने अपनी बुद्धि में मुश्किल शब्द डाल दिया है कि ज्ञान बड़ा मुश्किल है, योग बड़ा मुश्किल है, सेवाएं बड़ी मुश्किल है, धारणाएं बड़ी मुश्किल है। बाबा कितने मुश्किल शब्द ही डिक्शनरी से निकाल दो, योग शब्द को निकाल दो, क्या करो याद, सहज याद, सिंपल याद। याद तो हमको रहती है सारे दिन में, 24 घंटे याद रहती है, लेकिन किसी और की याद रहती है तो चेंज तो करना उसको सारा। तो केवल उस याद के साथ बाबा को जोड़ देना है, भले हम कर्म कर रहे हैं ये सोचें ये कर्म हमको किसने दिया है, ये कर्म करने से फायदा क्या है, और ये कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा कैसे बने, उस कर्म में मुझे कितनी खुशी मिल रही है, उस कर्म से मैं क्या सीख रहा हूं, वो कर्म मेरे भाग्य का निर्माण करने के लिए भगवान ने मुझे दिया है, ऐसी सेवा का मौका दिया है। तो हर चीज के साथ अगर हम ज्ञान को इन्वॉल्व कर देते हैं तो हमारा योग लगा रहेगा। योग ही नहीं कि बैठे बैठे योगी, बाबा ने कहा तुम 2-4 घंटे के आएंगे। हाँ तो योगी तो हमारा जीवन ही है, अब 2 मिनट अगर श्वास रुक जाए तो क्या हाल होगा, ओम शांति हो जाएगा। तो हमारा जीवन सदा योगी का है, 2-4 घंटे की योगी नहीं है, निरंतर योगी निरंतर सेवादारी। बाबा ने कहा ये अंतिम स्थिति है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस तो हमको अभी से करनी पड़ेगी, अगर अभी से ही प्रैक्टिस नहीं है तो अंत में कैसे करेंगे। तो हमको खुद ही ऐसे क्लू ऐसे ढूंढनी है, कुछ ऐसी युक्ति रचनी खुद ही कि हमारा निरंतर योग लगाए, चाहे वो कम शक्तिशाली है या ज्यादा शक्तिशाली है, योग लगाया जाना चाहिए। जैसे आज शाम के योग में हम सबको सम्मान दिया गया था, कौन सा सम्मान था, मैं यहां बैठने वाले मैं कौन सा ब्राह्मण बता, हाँ उसके आगे एक शब्द तो भूल गया असली वाला, चेतन दीपक, चेतन था बीच में था कि मान लिया हमने जी चलो ठीक है। तो हम दीपक संसार को रोशन करने वाले हैं, चेतन दीपक है। तो क्या हमको योग में सारस में स्मृति रही, केवल संकल्प तो करना है, बाकी काम ऊपर वाले का है, क्योंकि बाबा को ही सारा काम करना है, ताकत तो उसी की चल रही है, हमारी क्या बसात है उसमें, सारा उसी का खेल रचा हुआ है। और तो बीच में तो हम फंस गए हुए हैं, जो बाबा कहते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, लेकिन इसमें हमको फायदा बहुत है, बहुत खुशी है, फंसे नहीं, भगवान को ही हमने फंसा लिया। तो धर्म सत्ता और स्वराज्य की सत्ता, कौन सी तीन बात, 1, 2, 3। हाँ वो तो अपने मन से कुछ भी और जोड़ लो, 3 के 10 10 कर लो। हाँ उसको बचाएंगे कैसे, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको दवाई देनी पड़ेगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पहले तो उस बंदर को पकड़ने की ताकत रखो, उसको हाथ लगाओ, पास में जाओ उसके, हाँ तो उसी को तो पकड़ना है। हाँ तो उसका सबसे पहले तो साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए उसके पास में जाने के। हमारे वाइब्रेशन अगर प्यार भरे वाइब्रेशन है, उसका कल्याण करने के वाइब्रेशन है, तो सामने वाली चीज हमको हमारे पर अटैक नहीं करेगी। कोई भी हिंसक जानवर हमारे पर अटैक तब करता है अगर हम उसको छेड़ते हैं, अगर उसको नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। दूसरा अटैक तब करता है अगर हमारा उसके साथ हिसाब किताब है, कहीं ना कहीं हमने उसके साथ तो कुछ तो रॉन्ग किया हुआ है, तभी तो किया ना, क्योंकि बिना क्रिया के तो प्रतिक्रिया होती नहीं है। तो मन को बश करने के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसका। तो सबसे पहले उस मन को समझना है, उस मन के साथ प्यार करना है, डरना नहीं है उसे, अपनी कमजोरियों से डरना नहीं है, कमजोरियों को नोट करना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात अपनी कमजोरियों को निकालने का चिंतन करना। ऐसे में मेरे में कमजोरियां हैं और उनका हम चिंतन नहीं करें, पता नहीं चले तो दिन प्रतिदिन कमजोरियों का ढेर लगता जाएगा और कमजोरियों का इतना बोझ हो जाएगा कि अंत में आत्मा उसी से ग्रसित हो जाएगी और निकल नहीं पाएंगे। तो हमको घबराना नहीं इसी से। जितनी भयानक बीमारी होती है तो उतना ट्रीटमेंट उसका लंबा होता है, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। यह भी आत्मा लंबे समय से कितनी क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित है। फिर बाबा हम सबको अनेक प्रकार की युक्तियां देते हैं, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर बात की बाबा ने हमको समझ दी है। लेकिन समय के अनुसार हम कितना चलते हैं यह हम खुद जानते हैं कि श्रवण संपर्क में हमको क्या बोलना है। अब जैसे बाबा ने बताया स्वराज्य अर्थात तीन बातें बताई, कौन कौन सी, परिस्थिति, प्रकृति और माया। अब परिस्थिति को ले लिया जाए तो दिन में कितनी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन बाबा ने परिस्थितियों के लिए क्या बोला हुआ है, वो हमको याद आना चाहिए कि वो पा रहे हैं, वो हमारी नहीं है। हम अपनी स्थिति को छोड़कर दूसरे के जीवन में इंटरफेयर करते हैं तो दुखी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी के बारे में सोचना शुरू कर देता हूं, अब मेरा उसमें कोई लेन-देन है ही नहीं है, इंटरफेयर कर दिया उसके जीवन में, तो हम दुखी हो गए, उसके बारे में सोच रहे हैं ये क्यों करता है, ये कैसे करता है। आज बता भाई बाबा ने तो ना दो विधि बताई इसकी, कौन सी, हलचल से मुक्त रहने की, नॉट और डॉट। अब ये बताई हमको, लेकिन सारा दिन हमको याद रही वो नॉट और डॉट तो रह गया ओम शांति ओम नहीं, और बाहर आके क्वेश्चन मार्क, आश्चर्यजनक मात्रा, कौमा, बोई तुसी से तो हम सारा दिन खेलते रहते हैं। बाहर आके हम क्या बोलेंगे, देखो ये मुल्ली सुन के फिर भी ऐसा कर रहे हैं, अब हमको सोचने की जरूरत क्या है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि उन सेंटेंस के आगे हम फुल स्टॉप लगाने के बजाय उसको आगे बढ़ाने का, हमको विस्तार में जाने का रस हो गया है। इसलिए बाबा ने बताया ना कि व्यर्थ है विस्तार, था ना प्रधान में आज, लेकिन हमको सार देना, उसके लिए चाहिए समेटने की शक्ति। तो हमको समेटना अभी, लेकिन विस्तार करने की आदत पड़ गई है, तो हमको समेटने की शक्ति की थोड़ी ग्रोथ चाहिए, उसको आगे बढ़ाना है। क्या क्या समेटना है, अपने व्यर्थ संकल्पों को समेटना है, व्यर्थ देखने की आदत को, जो दूसरे के बारे में हम सोचते रहते हैं। अगर सोचना ही है तो शुभ भावना शुभ कामना रखो, लेकिन वो तब होगी जब हम आदत से मुक्त होंगे, आदत से मुक्ति नहीं है तो छोड़ेंगे कैसे, छूटेंगे कैसे। तो परिस्थिति माना ये प्राय है, हमारी अपनी नहीं है, वो रावण की प्रॉपर्टी है। दूसरे की प्रॉपर्टी पर अगर हम कब्जा करें तो दूसरा तो हमारे पर तो प्रतिक्रिया करेगा ना। अगर हम किसी के, चलो मान लिया किसी को कोई भी कमजोरी है, 10 लोगों के साथ बता रहे हैं, अब 10 लोगों की मानसिकता को हमने खराब कर दिया, उसका बोझ कहां आया, हमारे ऊपर आया। अगर मान लो चलो गलती हो भी गई है, हमारे से हो गई है, तो अपनी गलती को भी हमको विस्तार करने की जरूरत नहीं है, उसको समझ लेना है। दूसरे से गलती हो गई है तो उसको फैलाने की बजाय समेटो, तो समेटने की शक्ति का प्रयोग तो किया है, किया नहीं हमने, फिर बैठे रहते हैं घंटे घंटे योग में, परिवर्तन तो दिखाई नहीं देता। इतने लंबे समय के बाद भी संस्कारों का परिवर्तन क्यों नहीं होता है, इतने कड़क संस्कार बन जाते हैं कि मैं ही राइट हूं, जो मैं सोचता हूं वही राइट है। हाँ, दूसरे का रिकॉर्ड करो, तीसरे का भी करो, सबका करना पड़ेगा रिकॉर्ड, तो सबका करना पड़ेगा। तो हाँ, तो परिस्थिति अर्थात ये प्राय चीजें, हमारी स्थिति कौन सी है? स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। और कौन कौन सी स्थिति है, लिस्ट बनाओ अभी अभी, कौन कौन सी स्थिति होनी चाहिए हमारी? देवमानी स्थिति होनी चाहिए, आत्मानी स्थिति होनी चाहिए, फरिश्ता स्थिति होनी चाहिए, कर्मातीत स्थिति होनी चाहिए, बिंदु रूप स्थिति होनी चाहिए, अशरीरी स्थिति होनी चाहिए, चलते चलते भी होनी चाहिए अशरीरी स्थिति। कैसे चलते चलते? जब हम चलते हैं तो सोचना मेरा शरीर 10 मीटर आगे चल रहा है, मैं उसको धक्का देके चला रहा हूं। और बैठे बैठे अगर अशरीरी स्थिति है और सीधे हमको छोड़ना पड़े चलते चलते तो क्या करेंगे? तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमको तो हर समय अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा, क्योंकि माया कौन से मोड पर घात लगाकर बैठी है? दुश्मन है, भरोसा थोड़ा नहीं है कि माया इधर ही आएगी। माया तो बताया ना कि आत्मा जो है, आत्मा के अंदर आवरण घुस गया हो तो अंदर ही बैठा हुआ है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमको खुद ही योजना बनानी पड़ेगी। तो परिस्थिति प्राय है। दूसरा के भावन का प्रकृति। अब प्रकृति में हलचल में कैसे आती है? एक है प्रकृति के 5 तत्व, दूसरी प्रकृति कौन सी है? ये शरीर, इसकी भी हलचल में आ जाते हैं। कैसे आते हैं इस प्रकृति के हलचल में, इसके अधीन कैसे होते हैं? भावनिक का स्वराज्य अर्थात परिस्थिति, प्रकृति, माया, इन तीनों के अधिकारी होंगे, अधीन नहीं। कर्मेंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे। तो सारे दिन में कर्मेंद्रियां जो है, ये देह जो है, प्रकृति है, ये भी हमको धोखा देती रहती है, क्योंकि हम इसको धोखा देते रहते हैं। हम आत्माएं इस प्रकृति को धोखा दे रहे हैं। तो जब हम अपने आप, अपनी जो फैमिली है हमारी, हमारे कर्मचारी, उनको हम धोखा दे रहे हैं, कर्मचारी को पूरी पगार नहीं देंगे तो क्या होगा? क्या करेगा वो? स्ट्राइक कर देगा, स्ट्राइक करेगा, और साथ में षड्यंत्र भी रचेंगे। अगर उसको पूरी पगार देंगे तो वो अपना होगा। तो इन कर्मेंद्रियों को भी पूरी पगार देनी है। कौन सी पगार देनी है? इनको बहुत प्यार देना है। और क्या देना है? इनको ज्ञान देना है, रिगार्ड देना है, सम्मान करना है इनका। बाबा ने क्या कहा? ये शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, इसको थैंक्स देना है, क्योंकि इसी शरीर में तो रह के हमको पुरुषार्थ करना है। यही तो हमारा घर है, जिसके अंदर में रह के हमको इतना ऊंचा पुरुषार्थ करना है, इतनी सारी सेवाएं करनी है, इतना अच्छा योग लगाना है। तो इन कर्मेंद्रियों को, अभी ये पेट भी तो कर्मचारी है ना, तो पेट के अंदर में ऐसी वैसी चीज डालते रहेंगे और अंदर से गुड़ गुड़ करता रहेगा, तो आवाज तो हमारा ध्यान तो सारा वही जाएगा। तो हर चीज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, खाने पीने की भी, कि हमको कौन सी चीज सूट नहीं कर रही है वो हमको खुद ही देखना है। नहीं तो वो गैस चढ़ जाती है सिर में, कहीं गैस कहां हो रही, कहां हो रही है, पता भी है चीज खाने से हमको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जीव जो है ना, इन कर्मचारियों की दुश्मनी आपस में, तो जीव को स्वाद है, वो खा लेगी और दुख पेट में होगा। तो सुनिए, वो भी बात ठीक है आपकी, लेकिन वो हमारे लिए बनाया नहीं ना, तो जो आ रहे हैं उनके लिए बनाया, लेकिन ये जीव है ना, हमको वहां ले जाती है। हाँ, तो उनको उनको देखना नहीं, उनको केवल उनके बारे में केवल सोचना है कि सब ठीक हो जाए। हमने दूसरे के जीवन में इंटरफेयर करने के लिए हमको प्रयास नहीं करना है, नहीं तो हम खुद दुखी हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए मैं दुखी हो गया खा पी के और आप मुझे देख के दुखी हैं, तो दोनों दुखी हो गए। अब डॉक्टर दुखी हो गया तो हमारा मरीज का इलाज कैसे करेगा फिर? तो अपने आप को डॉक्टर समझना है, क्योंकि जो यहां आते हैं वो तो कभी कभार आते हैं ना, तो हमको क्या करना है, हर चीज यहां तो उपलब्ध होती है, तो अपनी समझ के साथ करना है। ठीक है, तो परिस्थिति और प्रकृति, प्रकृति का भी हमको ध्यान रखना है। जितना हम इस प्रकृति का ध्यान रखेंगे, दूसरी प्रकृति भी हमको सहयोग देगी, चाहे वो सर्दी गर्मी, हमेशा उस प्रकृति के अनुकूल हमारी ये प्रकृति हमको सहयोग देती रहेगी। तीसरा था माया, माया भी हमको अधीन नहीं करे। माया भी बड़ा रॉयल रूप से आती है। पिछले संडे में बोली थी ना कि माया नए नए रूप में आती है, और नए नए रूप तो सबको पता ही है, सबके अपने अपने हो सकते हैं। तो ये थी धर्मसत्ता और राज्यसत्ता। बाबा ने कहा धर्मसत्ता की निशानी है कौन सी? लाइट का ताज और रतन जड़ी ताज। अब लाइट का ताज अर्थात क्या? पवित्रता का ताज। और रत्नगढ़ अर्थात हाँ, तो उसका अनुभव अभी हमको करना है, बहानी करना है, अभी अनुभव करना है। आगे स्वर्ग कहां देखा हमने? देख तो अभी हम रहे हैं ना, वो तो अनुभव। अगर जीवन मुक्ति स्थिति का अभी अनुभव नहीं करेंगे तो वहां कैसे करेंगे? तो भावनी का मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव तो अभी संगम पर करना है। संगम युग है अनुभव करने का युग है। द्वापर युग से तो भावनी का दोनों सत्ताएं अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन सत्युग में दोनों सत्ताएं एक के हाथ में रहती हैं, धर्म सत्ता भी और राज्य सत्ता भी। अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है, लेकिन इन सत्ताओं के अधिकार, इन सत्ताओं का अधिकार हमको रखना है, उसकी स्मृति रहनी चाहिए। भावनी का अपना अधिकार भूल जाते हैं, इसलिए बच्चे अधीन हो जाते हैं। और अधिकारीपन की सीट पर सेट रहेंगे तो सारी शक्तियां हमारे पास में है, सारी सत्ताएं हमारे पास में है। बाप तो अधिकार देने के लिए दे रहे हैं, लेकिन बच्चे लेने में नंबरवार बन जाते हैं। देना मुश्किल होता है, लेने तो आसान है, लेने में तो खुशी होती है, लेकिन लेने में भी हम अपना सामर्थ्य नहीं रखते हैं। क्यों नहीं लेते हैं बाबा से? क्यों नहीं लेते तुम? व्यर्थ में चले जाते हैं। और लेने की विधि, क्योंकि हमारा पात्र भी वैसा चाहिए, वैल्यू चाहिए उस चीज की, उससे प्यार चाहिए। जैसे बड़े ऑफिसर से अगर हमको बात करनी है तो हमारी बुद्धि भी वैसी चाहिए ताकि उसकी बात को समझ सके हम। तो बाबा परम पवित्र है, तो हमारा पात्र भी तो ऐसा चाहिए ना कि जिस पात्र के अंदर परमात्मा के सारे अधिकार बैठ सके। वो अधिकार कौन कौन से? सर्व खजानों का अधिकार मिला हुआ हमको, सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का, कितने सारे अधिकार मिले हमको। वो सारे अधिकारों की हमको स्मृति लेनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम अधीनता के संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए खुद ही उलझते रहते हैं। उलझाता कोई ऊषा नहीं है, खुद ही हम अपने ऊपर बेरहमी करते रहते हैं। पता भी है ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ से हम एकदम मुक्त हो जाएंगे। अगर आता भी है फिर से संकल्प करो। बाबा ने कहा बच्चे संकल्प तो करते हैं लेकिन उसमें दृढ़ता कम होती है, तो दृढ़ संकल्प भी करते हैं फिर भी हो जाता है, और दृढ़ता ज्यादा करनी पड़ेगी। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो बार बार अगर हार भी खा गए तो आज से बाबा ने क्या कहा कि डॉट लगा दो, जो हो गया सो हो गया, अपसेट नहीं होना है। अपसेट होते हैं तो क्या होता है, फिर हलचल में आते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे गिफ्ट दे दो, अपसेट की मधुमन में गिफ्ट दे के जाओ। और गिफ्ट तो किसको दी जाती है? जो जिससे हमको प्यार होता है। और फिर गिफ्ट वापस में लेती है? ये अपने आप ही आ जाती है। तो हाँ, तो अपसेट नहीं होना अपने को। अपसेट होने के संस्कार हमारे पास्ट के संस्कार हैं, इसलिए बार बार या तो हम अपने पास्ट लाइफ को देखते रहते हैं, और सारे दिन में जो हमारे जैसे सवेरे से लेकर अभी तक, अभी जो बीत गया उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। पास्ट की बात को पकड़ते हैं तो अपसेट हो जाते हैं, इसलिए प्रेजेंट क्या है, उपहार है, वो हमारे लिए गिफ्ट है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में कि अभी हमको जो स्मृति है ज्ञान की कि भगवान ने हम सबको खुशियों की खान दी है, तो हमारा फेस कैसा दिखाई देना चाहिए? भावनी का मुस्कुराता हुआ। आज की मुरली में क्या बताया? रूहानी गुलाब, गुलाब की तरह चाहिए। लेकिन है कैसा, कौन से फूल की तरह है? शिशु होता है कर्ज खत्म, अक के फूल की तरह तो नहीं गई। तो रूहानी मुस्कुराता हुआ खिला हुआ गुलाब चाहिए चेहरा ऐसा। नहीं तो बाबा ने कहा कोई कोई बच्चों का फेस ऐसा दिखाई देते पता नहीं जैसे सारा खून ही निकाल लिया हो किसी ने, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। भगवान के बच्चे उदास अच्छा लगेगा? ये कोई साहूकार का बच्चा हो और वो ऐसे उदास रहे बैठा रहे तो क्या लोग कहेंगे कि इसके माँ बाप घर में पूछते नहीं खाने पीने के लिए, कैसे माँ बाप होंगे? तो हमसे भगवान के बच्चे हैं। और बाबा ने कहा कि अंत में तो तुम बच्चों के चेहरे से तो प्रत्यक्षता होगी, निश्चय होना चाहिए। निश्चय और नशा ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये चेहरा जो है ना ये हमारा क्या है, ये परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का दर्पण है ये। इसलिए बताया इन कर्मेंद्रियों की महत्ता को समझना है। ये साधारण कर्मेंद्रिया नहीं है, सारे संसार को रोशन करने के लिए भगवान ने हम सबको दृष्टि दी है, सारे संसार को परमात्मा शक्तियों की साकाश के लिए दृष्टि प्रदान की है। बाबा ने कहा तुम बच्चे मुझे क्या देते हो? पुराना तन जो दवाइयों के धक्के से चलता हुआ है, सड़ा हुआ शरीर है, धन कैसा है, काला धन है, मन कैसा है जो भटकता रहता बंदर की तरह, ये तुम बच्चों ने मुझे दिया है, और मैं तुमको क्या देता हूं, विश्व की बादशाही देते हो। तो बाबा हमको क्या देते हैं और हम बच्चे बाबा को क्या देते हैं, तो कितना उपकार है हमारे पर। अगर ये बातें भी अगर हमको स्मृति में रहती हैं तो भी खुशी और नशा चढ़ा रहेगा, और उन संकल्पों का प्रभाव फिर हमारे पेश पर स्वतः दिखाई देता है, क्योंकि हर संकल्प हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। अच्छा शक्तिशाली संकल्प करेंगे तो हमारी स्थिति शक्तिशाली रहेगी, कमजोर संकल्प रचना करेंगे तो हम जैसे मायावी माया के वश हो जाएंगे, तो हमारे चेहरे पर उदासी, फिर वही सोच चलती रहेगी क्या करूं, होता तो है नहीं है, कौन बनाए, छोड़ो चक्कर को, जैसे चल रहे वैसे चलते जाओ, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ड्रामा में होगा, मेरा पार्ट तो कर लेंगे। तो एक गे गे की भाषा में हम फिर क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, उसी में उलझ रहते हैं। तो क्या करना है, नॉट और डॉट, जो नहीं करना है प्रैक्टिस कीजिए उसकी, नहीं करना तो नहीं करना, छोड़ दो उसको, किनारे हो जाओ, और डॉट फुल स्टॉप लगा दो। होली जो बीत गया सो बीत गया, होली बात हम बाबा के होली है। चार प्रकार की होली बताते हैं मुरली में, कौन कौन सी, हाँ, एक होली माने बीत गई, दूसरा होली अर्थात पवित्र, तीसरा मैं बाप की होली, चौथा रंग वाले होली, बाप के रंग में रंगी, और पांचवा, और बुद्धि को चलाना पड़ता है ना, बुद्धि को चलाओ, क्या हो सकता है पांचवा होली का और अर्थ, जलाना, ये तो बताया नहीं किसी ने, जलाना, सबसे पहले तो होली को जलाना पड़ता है, तो होली में क्या जलाते हैं, तो अपने पुराने संस्कारों के जो व्यर्थ का जो गोबर अंदर भरा पड़ा है, बाबा कहते भूसा बुद्धि में भरा पड़ा है, उन संस्कारों को जला दो, वो व्यर्थ के संस्कारों को जला दो, तो ये पांच होली के अर्थ हो गए, और छठा आ जाएगा, आता देखो थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना, सचमुच बाबा हेल्प करता है अगर हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो। हाँ जी, होली मनाना, देखो छठा निकला है कि नहीं, और सातवां होली अर्थात मनाना, मनानी है, और मिठाई खाना, नाचना गाना, उत्सव, हाँ, खिलाना, खाना भी खिलाना भी, फिर ये कितने प्रकार की होली होगी, तो ऐसे होली की लिस्ट बनाएंगे तो क्लास तो अपने आप ही तैयार हो जाती है, कराने की जरूरत नहीं है, और वो क्लास अपने लिए फायदेमंद होती है। जो भी हम चिंतन करते हैं आधा पौना घंटा हमने देखा है खुद ही, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद हमारे अपने लिए रहता है, इसलिए खुद इसके स्तर पर अपने आप को चिंतन करना है, बुद्धि को विशाल बनाना है, क्योंकि बाबा ने बुद्धि के लिए वरदान दिया हुआ है, कौन सा, दिव्य बुद्धि का। अब भगवान का वरदान मिला हुआ तो काम तो करेगा ना, लेकिन उस पर थोड़ा हमको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बुद्धि को तो चलाना पड़ेगा, विशाल बुद्धि का वरदान दिया हुआ है, दूरांदेशी बुद्धि का वरदान दिया हुआ है, पवित्र बुद्धि का वरदान दिया हुआ है, और कौन कौन सी बुद्धि का वरदान दिया हुआ है, पारस बुद्धि का वरदान दिया हुआ है, दिव्य बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, दैवी बुद्धि, हंस बुद्धि, मंद बुद्धि, देखो इस पर कितना खुश होगी। हाँ, चिड़िया उड़, तोता उड़, तो सबके तोते उड़ गए अभी। तो बाबा ने हमको कितने वरदान दिए बुद्धि के, है ना, तो हमारे पास चिंतन करने का बहुत सारा मटेरियल है, बाबा ने हम सबको इतना मटेरियल दे दिया, इतना मटेरियल दे दिया कि वो खत्म नहीं होता। जो बाबा उसके लिए एग्जांपल क्या देते कि सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ तो भी लिखा ना जाए, तो इतना विशाल अथाह ज्ञान है, लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा सा जो है बाबा तो वही मुरली चलाते रहते हैं बार बार, वही 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 तो बातें हैं, लेकिन मुरली में बहुत सारी बातें होती हैं, इतनी ढेर सारी नवीन बातें होती हैं, लेकिन उसके लिए उस बातों को कैच करने के लिए हमारी बुद्धि भी वैसे चाहिए। कोई उस पर नई कविता बना दूं, है ना, ये हमारे भाई जी हैं कविता बहुत अच्छी बनाते हैं, नाम भूल गया उनका, आपके पीछे बैठे ना कुशल, ये दिल्ली वाले ये जो इधर उधर देख रहे। तो हमको अपनी बुद्धि को चलाना है। अच्छा, तो डॉट और नॉट लगा दिया, अपसेट होंगे तो क्या बाबा को गिफ्ट दे देंगे, आज से अपसेट नहीं होंगे, अपसेट हमारी पास्ट लाइफ थी, अब इसे प्रेजेंट में रहेंगे, और क्या करेंगे, बाबा ने कहा विदेशी कौन है, बड़े बैल्यू रत्न है, अमूल्य रत्न है, बेदाग रत्न, तो कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। दाग कब लगता है, जब हम डिस्कस करने के बाद जब हमारी राय नहीं मानी जाती है। तो बाबा कहते जैसे हम अपनी बातों को खुशी खुशी बताते हैं, ऐसे दूसरे के विचारों को भी खुशी खुशी स्वीकार करो, इग्नोर नहीं करो उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ तो कल्याणकारी कोई मिलेगा ऐसा जिससे हम सबका भला होगा, कोई ना कोई तो टचिंग होगी। तो हर एक का रिगार्ड देना है, और हर इंसान रिगार्ड का ही प्यासा है, पूरा संसार रिगार्ड का प्यासा है। सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, अगर सम्मान नहीं देंगे तो सारा सामान ही चला जाएगा, देना ही लेना है। तो दुआएं देनी दुआएं लेनी है, तो कितनी सारी बाबा बताते हैं। इसलिए बाबा के कहते हैं के करके सिखाओ, कह के नहीं सिखाओ। कहना आसान है लेकिन करना उससे आसान है, बिल्कुल मुश्किल ना लिया ना, नहीं करना उससे आसान है। थोड़ा भी हम कुछ करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरों पर तो जरूर पड़ता है, इसलिए हर चीज की शुरुआत स्वयं से करनी है। इसलिए विदेशियों को बाबा ने कहा कि एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, है ना। विदेशियों ने एक टाइटल सिद्ध किया ना बाबा का, कौन सा, विश्व कल्याणकारी। तो कैसे विदेशों में तो सेवा इतना क्रिटिकल होती है, क्योंकि वहां की संस्कृति, वहां का पहनावा, भाषा, सब चीजें अलग हैं टोटल, और वहां भगवान का ज्ञान देना कोई साधारण काम थोड़ा नहीं है। उस पश्चिमी है जी, अटैचमेंट नहीं है किसी, हाँ वहां थोड़ा ये डिटैच जल्दी रहते हैं तो नष्ट हुआ। और दूसरा विदेशियों की विशेषता क्या है, क्या बताया आज बाबा ने, सच बोल देते हैं वो। बाबा ने पूछा ना कौन कौन अपसेट होता है, हाथ उठाओ, है ना। तो यहाँ कौन कौन होता है अपसेट, हाथ उठाओ, कोई नहीं होता ना, सब सेट है अभी तो सेट है ना, अभी थोड़ा अपसेट है इसमें, तो हमने पास की बात को पकड़ के रखा हुआ है, तो जो बीत गया बिंदी नहीं लगाई फिर भी तो बाबा कहते हैं बच्चे तो बाप को खुश कर देते हैं, है ना, इसकी भी मुबारक थे, बच्चे होशियार हो गए हैं, है ना, लेकिन कभी कभी डल बुद्धि हो जाते हैं। वो बाबा तो डल बुद्धि तो बोला था ना बीच में, है ना, तो डल नहीं बनना, क्या बनना है, विशाल बुद्धि बनना है। तो जितनी भी बाबा हमको बातें बताते हैं उसका हमको चिंतन करते रहना है। तो स्वराज्य अर्थात अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए खुद ही प्लान तैयार करना है, क्योंकि कर्मेंद्रियां हमारे जीवन में सबसे अहम माध्यम है पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां स्थूल कर्मेंद्रियां हैं। बुद्धि है, मन है, संस्कार है, इनसे हमको प्यार करना सीखना है। बुद्धि बाबा कहते हैं सोने का बर्तन होना चाहिए, तो सोने का बर्तन कैसे बनेगा, जब इसमें स्वच्छ बनेगा और परमात्म ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे। जितना बुद्धि की सफाई करते रहेंगे उतना चमकेगी। जैसे बर्तन होते हैं उसको क्या करते हैं कुछ सालों के बाद, कलई, कलई कहते हैं उसको, हाँ, तो कितने साफ हो जाते हैं, चमक जाते हैं वो, है ना। तांबे का बर्तन होते तो कैसे साफ करते हैं उसको, नींबू और नमक डालते हैं, कितना साफ हो जाता है। तो बुद्धि को भी नींबू और नमक से साफ करने का है, कैसे साफ करेंगे इसको, ज्ञान के जल से साफ करेंगे, योग की अग्नि से, है ना। ऐसे योग में प्रयोग करना है कि मैंने अपने मन बुद्धि संस्कार को निकाल के सामने रख दिया, एक भट्टी लगी है, परमात्म शक्तियों की भट्टी, एकदम प्रचंड ऊर्जा उसमें से अग्नि निकल रही है, और जैसे मैंने उसमें डाल दिया है और सारे निखर के फिर उसको यहां रख दिया। अपने आप ही नए नए प्रयोग करने हैं, खुद अपने आप ऐसे अनेक विजन हमको खुद क्रिएट करने हैं, ताकि मन बुद्धि बिजी रहे, नहीं तो मन बुद्धि को भागने के बहुत चांस है, हाँ जी, उसको काम दे देना उसको, और फिर एक बार रस बैठ गया तो फिर मन बुद्धि जाएगा नहीं कहीं भी। सारा खेल तो मन बुद्धि के ऊपर ही है, मन बुद्धि भागते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, मन बुद्धि कंट्रोल है तो आत्मा को रस मिलता है, और एक बार रस मिलना हो गया मन बुद्धि को तो आत्मा फिर बार बार, एक अगर एक बार हमने आम खा लिया तो बार बार कहां बुद्धि जाएगी, है ना, आम खाने में, है ना। तो जो भी चीज मिलती है अच्छी मिलती है, बच्चों को चॉकलेट देते हैं, अगर फिर एक बार अगर हमने किसी को चॉकलेट दे दी तो जब भी वो बच्चा बाहर से गुजरेगा तो देखेगा जरूर एक बार कि दोबारा चॉकलेट मिलेगी इधर से। तो बाबा ने भी हमको चॉकलेट खिला दी है, कौन सी, ज्ञान योग की चॉकलेट, लेकिन ये चॉकलेट करेले की तरह है, मीठी बना नहीं है, इसको मीठा हमको खुद बनाना है। कितना हम इसमें ज्ञानियों का मिठास डालते हैं, कितना हम अपने मन बुद्धि को परमात्म ज्ञान रत्नों से भरते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान रत्न क्या है, जैसे हीरे मोती हैं, हीरा कितना वैल्यूएबल होता है। तो बाबा ने कहा पिछले संडे के मूल्य में कहा था ना, मैं तुमको क्या बनाने आया हूँ, हीरे तुल्य हो, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य हो, तुम क्या बन गए थे। तो बाबा हम सबको हीरे तुल्य हो, और हीरा कितनी चमक बिखेरता, आपने थोड़ा सा भी अगर हीरे को दाग लग जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो बाबा कैसे तुम बच्चे तो फ्लॉलेस हो, दाग रहित हो, बेदाग हीरे हो, तुम परमात्मा के ओर से तराशे जाने वाले हीरे हैं। कितनी हमारी खुश, कितनी हमारी खुशनसीबी है, कम बात थोड़ा भी है कि स्वयं भगवान हमको तराश रहा है, वो हमको ज्ञान रत्न से श्रृंगार रहा है। तो ऐसे अनेक प्रकार की महावाक्य जो आत्मा को पंख लगा देते हैं, उड़ान भरती है। अगर हम थोड़ा सा भी चिंतन करते रहेंगे और जब भी प्रयोग में बैठेंगे तो फिर उसमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, एक ही कोई पॉइंट पर आत्मा ठहर जाती है और सारा रस परमात्म रूप से अनुभव होने लगता है। फिर कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खांस रहा है, बुद्धि जाती नहीं है वहां, कुछ भी होता रहे वहां। एक बार रस का अनुभव हो गया फिर आत्मा उसी में रम जाती है। जैसे आपस में अगर दो सहेलियां बात कर रही हो जिनमें बहुत रस आ रहा हो तो बीच में दूसरे के पास में बातें सुनाई देती है उनकी कोई। तो अगर हम दो सहेलियां कौन सी हैं, मैं आत्मा और परमात्मा, हम दोनों सहेलियां हैं, तो आपस में अगर बातें करना चालू कर दिया तो फिर बाबा कुछ भी करता रहे कोई भी, वो दोस्त है ना हमारा। तो बाबा को अपनी सहेली बनाना है, दूसरी संसार की सहेलियां डुबा देंगी नहीं सहेली हमको। तो बाबा को क्या, बाबा ने कहा गीत में भी क्या सुना, खुदा दोस्त की शत्रशाया है, जो खोया हुआ स्वराज्य हमको लौटा दिया। तो कितना बड़ा राज्य हमको लौटा दिया, वो सती हुई राज्य तो छोटा है, सिंहनी हुई राज्य कितना बड़ा है, सबसे बड़ा राज्य तो यही है। कल बाबा ने मुरली में क्या कहा था प्रश्न के उत्तर में, हाँ ईश्वर संतान का ज्यादा बड़ा पद है, लेकिन कल के प्रश्न उत्तर में क्या कहा था,
तो कभी भी ये मत कहना दुखी होके कि घर जाना।
हाँ बान प्रस्थियों को संकल्प तो नहीं, तुम बच्चे बान प्रस्थी हो, ये संकल्प तो नहीं आता घर जाना है। अब घर जाना, दोनों बात बाबा कहते हैं, तो कभी कुछ कहते जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम दुखी ना रहे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट लाइफ है संगम युग जीवन है। जब तक हमारा संगम युग जीवन है तो एक भी सेकेंड बिना खुशी के बीतना नहीं चाहिए। हाँ बीच में गायब हो सकती है, लेकिन फिर से उठ के खड़े हो जाना, फिर से उड़ान भरनी है, फिर से नया पुरुषार्थ, फिर से नया संकल्प, फिर से नया जीवन, फिर से नया मनसा, नई ऊर्जा, नया दिन, नई रात, नया पुरुषार्थ। तो नवीनता जीवन में चाहिए, अगर जीवन में नवीनता नहीं है तो क्या होता है, फिर उदासी आती है वहां। तो ऐसे अनेक सारी बातें हैं जो चिंतन करते ऐसे टाइम पूरा होगा, ऐसे पता नहीं चला। ओम शांति।